نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پیدا کیا اس نے ہمیں انسان بنایا اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد پھر اس سے بھی بڑی نعمت کہ ہمیں شعور دیا اور اس سے بھی بڑی نعمت کہ ہمیں قرآن کی محبت دی اس وقت ہم قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھے آپ نے بہت ایفرٹ کی ہوگی مجھے یقین ہے ہمیشہ میں اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھتی ہوں کہ میرا حصہ تو بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے آپ کے اس پروگرام کے رینج ہونے سے لے کر ہمارے یہاں پہنچنے میں سینکڑوں لوگ انوالو ہیں آپ لوگ بھی آئے کر کے آئے کئی گھنٹوں کے سفر ہوئے اب اگر کسی وجہ سے ہم اس چیز سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہماری قسمت کی بات ہوگی لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا چند لمحوں کے لیے خود سے پوچھتے ہیں اگر میں مسلمان نہ ہوتی تو کیا ہوتی کیا میرے اور آپ کے اندر ایمان کی وہ حرارت ہے کہ ہم شعور سے سمجھ کے اسلام قبول کرتے ہیں کیا آپ کی کبھی کسی ریورٹ مسلم سے ملاقات ہوئی میری جب بھی کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے میں ان کا ہاتھ نہ چھوڑوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سسٹر سے پوچھوں کہ سناؤ آخر اتنی جرأت کیسے آئی کہ حق کو سمجھ کر پھر اس کو ماننا پھر اس کا اظہار کیا اور اس کے راستے کی جو قربانیاں تھیں وہ دیتے ہوئے بھی تیار رہے ابھی کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی اور آپ کو اگر انٹرسٹ ہوگا تو اینڈ پہ سن سکتے ہیں تھوڑی طویل ہے اس لیے میں پلے نہیں کرنا چاہتی ایک شخص خود اپنے مسلمان ہونے کی کہانی سناتا ہے اور اس کے نام جو بھی ہیں وہ انڈین نام ہے مجھے یاد نہیں ہے اور اس ویڈیو کا نام ہی یہ ہے کہ کسی کے مسلمان ہونے کا دل خراش واقعہ وہ شخص اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سناتا ہے کہ میرا تعلق انڈیا کے کسی خاندان سے تھا اور اس کا انداز ہی بتا رہا ہے وہ بولنے میں اس کے لفظ اور اس کی اردو بھی انڈین ہی ہے بالکل اور کہتا ہے کہ بدقسمتی سے میرا تعلق کسی برے خاندان سے تھا میرا ماموں بھی ڈاکو میں بھی ڈاکو فلاں فلاں پھر اس نے اس پہ بری لمبی کہانی سنائی ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے کتنی نفرت تھی اور ہم نے ایک دن میں شاید 20-25 مسلمانوں کو بھی مارا قصہ مختصر کرتے کرتے ہوا کیا کہ اس کے بھائی کی ایک بیٹی جو تھی وہ کسی بھی ڈاکوؤں کے گروہ میں پھنس گئی وہ اس کو لے گئے جب وہ وہاں لے گئے تو انہوں نے اس کو استعمال کرنا چاہا کہ اس کو بھی اپنے ڈاکوؤں ڈاکے ڈالنے اور چوری چکاری میں استعمال کریں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اب اس لڑکی کو جب سمجھ آئی کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے اور اس کو شعور آیا تو اس نے اپنے آپ کو ان سے بچانے کی پوری کوشش کی اس نے دیکھا اور پھر اس لڑکی کی کہانی اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی نے دیکھا کہ اس پورے گروہ میں جو ڈاکوؤں کا ہے ایک مسلمان لڑکا بھی ہے اب وہ کس حالات سے پہنچ گیا ہمیں اس کی نہیں پرواہ کہتی کہ میں یہ دیکھتی تھی کہ دوسرے ڈاکوؤں سے اس کا جو رویہ ہے نا فرق ہے خیر اس کہتی کہ میں نے اس سے بات کی کہ میں حالات کے تھپیڑوں میں ادھر پہنچ تو گئی ہوں لیکن مجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہے تو مجھے ان سے بچاؤ اس نے کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے وعدے کی پابندی کرتا ہے تو میں نے تمہیں کہہ دیا نا تو پھر آج سے تم میری بہن ہو آج کے بعد تمہاری عزت کرنا کرانا اور تمہیں یہاں سے جان چھڑوانا تمہاری یہ میرا کام ہے خیر اس نے باقی گروہ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم اتنے مرد ہیں تو یہ عورت اندر اچھی نہیں لگتی اس طرح تو پہلے تو یہ کرو کہ اس کو مردوں والے کپڑے پہناؤ تاکہ اس کی پہچان ذرا زیادہ نہ ہو جہاں بھی ہم جائیں تو پتہ نہ چلے ارادہ اس کا یہ تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کو ان کی نظروں سے الگ کروں کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے اس کے بارے میں خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اس کو لڑکوں والے کپڑے پہنائے گئے फिर इसने उनसे कह कर के इसके रहने के लिए थोड़ा सा कोई अलग इंतज़ाम होना चाहिए करा दिए। कुछ दिन वो उनके साथ लगा रहा। जब गैंग को भी यकीन हो गया कि ये भी मुखलस है और लड़की भी हमारे साथ मुखलिस है, तो इसने इस लड़की को एक दिन मशवरा दिया कि देखो फलां जगह जब हम जाएंगे वहाँ से ये एड्रेस है मेरे गांव का, जो भी है तुम टांगे पे बैठ के चली जाना, वहाँ तुम जाओगी तो मेरे खानदान का कोई शख्स मिलेगा तो मेरा नाम लेके उसको बताना, मैं यहाँ से और वहाँ से तुम पहुँच जाना अपने बाप के घर। और वो लड़की भी हिंदू थी, ज़ाहिर है इसके भाई की बेटी थी। किस्सा मुख्तसर देखिए कि सारी जो कहता है टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये लड़की वहां से भागने में कामयाब हो गई। वो लड़की जब वहां से भागी तो उस मुसलमान लड़के के घर वालों के पास आई, उन्होंने इसकी बड़ी इज्जत की पूरी तरह। अब जब उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा इज्जत की तो कुछ उनको लगा कि इतने मर्दों में होकर आई है दिस एंड दैट, तो इसकी तो इज्जत भी नहीं ठीक। डॉक्टर्स पे ले गए, चेक करते हैं, डॉक्टर ने कहा इसकी इज्जत महफूज है। जितने को दिन वो मुसलमान फैमिली में रही उस वक्त वो लड़की जो थी वो इस्लाम को देखती रही। उसके बाद अब उन्होंने पूछा कि देखो कि तुम अपने घर जाना चाहती हो, इन्होंने कहा कि जाना चाहती हूँ लेकिन मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। ये लड़की मुसलमान हो गई। जब ये लड़की मुसलमान हो गई तो इसको अब ये डर था कि अगर मैं मुसलमान होकर अपने खानदान जो हिंदू खानदान है बुरा उसमें गई तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। किस्सा उन्होंने कहा कि देख लो तुम्हारी मर्जी। इसी तरह किसी मौलवी साहब से भी उन्होंने मिलवा दिया और लंबी बात से छोटी बात ये हुई उसकी कहानी में कि उसके बाद वो लड़की मुसलमान हुई, एक साल तक मुसलमान घरों में रहती रही और उसको अपनी माँ की याद आने लगी। ख्वाब में इसने देखा कि मेरी माँ मर रही है। तो इस लड़की को बड़ी मोहब्बत थी अपनी माँ से। इसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी माँ मर रही है तो मैं ये नहीं चाहती कि वो कुफर पे मरे, तो मैं उसको इस्लाम पे, मैं उसको उस तक पहुंचना चाहती हूँ। तो इन क्या होगा, उन्होंने कहा कि तुम जाओ और दो तीन बातें हैं कि तुम उनके साथ अच्छा मामला अपना रखो और फिर अगर दो तीन ही बातें होंगी या तो वो भी मुसलमान हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा ना तो वो तुम्हें मार देंगे, तो तुम भी एक तबलीग करती भी मरोगी तो मुसलमान तुम शहीद हो जाओगी। खैर ये लड़की अपने गाँव भिजवाई गई। अब वहाँ ये चचा भी था जो ये कहानी सुना रहा है इस वक्त और उसका बाप भी था। जूं ही उन्होंने अपनी लड़की को देखा और उनको ये पता चला कि ये जो लड़की है ये मुसलमान होगी और कहती मेरे आने से शायद कुछ दिन के बाद मेरी माँ मर गई, माँ हकीकी तौर पे मर गई। अब ये कहती मुझ मेरे पे जुल्मों से तुम शुरू हो गया, वो कहते थे कि तुम कल इस्लाम छोड़ दो। जब उन्होंने उसको कहा कि तुम भी इस्लाम छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, उसने कहा ये तो अब कभी हो नहीं सकता। एक दिन ये चचा कहता है कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि अब ये हमारे हाथ से निकल गई है, अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम इसको जला दें वरना ये दूसरों तक इस्लाम भेजेगी। इसने कहा कि मैं तो पहले ही उससे नफरत करता था कि ये इस्लाम मुसलमान होगी, मैंने भाई से कहा ठीक है। तो बहाना करा उस लड़की के साथ कि आओ हम तुम्हें किसी तरह घुमाने जा रहे हैं, लेकिन कहता है कि मुझे लगता है कि उसको सपने में रब ने सब कुछ बता दिया था। तो वो लड़की हंसी हमारी बात पे, कहने लगी कि मुझे पता है जो तुम मुझे जिस शहर पे जा रहे हो मुझे सब पता है, तुम मुझे कहाँ जाओगे, बस मुझे थोड़ा सा दो नफिल पढ़ने की इजाज़त दे दो। वो लड़की कहता है मेरी हमारी बच्ची ने गुस्ल किया, कब खुशबू मली, दुल्हन की तरह अच्छे कपड़े पहने, उससे नमाज पढ़ी, हमारे साथ चल पड़ी, जैसे ऐसे लग रहा था कि उसको पता है कि अब मैंने वापस नहीं आना। और कहने लगी जब इस बीच में इसमें ये हुआ कि जब उसकी माँ मरी ना तो कहते हैं कि इस बच्ची ने इतनी जिद की इस बात की कि मेरी माँ को मुसलमानों के हवाले करो क्योंकि मैं गवाही देती हूँ कि मरने से पहले मेरी माँ ने कलमा पढ़ा था। तो मेरे भाई को ये बात बड़ी बुरी लगी कि मैं बिरादरी को क्या जवाब दूंगा कि मैं अपनी बीवी को मुसलमानों के हवाले कर रहा हूँ। कहता वो लड़की चीखती ही रही लेकिन हमने उसकी माँ को जला दिया। उसके बाद जब उसको लेकर ये चचा और बाप दोनों गए, कहते हमने वहां जाके खड़ा खोदा, उसमें ईंधन डाला और हमने अपने हाथ से इस बच्ची को आग में डाला और वो आसमान पर देखकर कह रही थी कि अल्लाह तू गवाह रहना, अल्लाह तू देख रहना, अल्लाह तू मुझसे खुश है। और ये शख्स हिंदू जो ये बात सुनाते वो खुद कह रहा है कि मैं वो जालिम और बदनसीब इंसान हूँ लेकिन मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जो बाद में इसकी कहानी में आएगा। और अखीर कहता है कि सूरत बुरूज में जो वाक्य है ना आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जलाया गया और आग में डाला गया, कहता है कि मैं वो बदनसीब हूँ कि मैंने भी अपनी भतीजी के साथ वही किया। कहता है कि वहां ये खड़ा खोद कर मेरा भाई तो परे खड़ा होके आंसू बहाने लगा, मैंने अपने हाथों से अपनी भतीजी को आग में डाला, तेल लगाया और वो जलती रही और कहती रही कि रब मुझे तू देख रहा। कहते इसको जला के वापस आए तो मेरा भाई तो जरा दुखी था, वो तो चुप हो गया। कहते मेरे दिल पे उसकी बातों का एक असर हुआ और वो कहती थी जब वो मौलवी साहब के जरिए से घर गई तो उसने कहा कि देखना तुम्हारी मौत तुम्हारे खानदान की हिदायत का जरिया बनेगी। उसके बाद वो कहता है कि उसका बाप डिप्रेशन में चला गया कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया। अल्लाह ने कुछ ऐसे हालात बना दिए कि उसके बाप को कोई मुसलमान मिल गया और उसका बाप जो है, जो इस कहानी सुनाने वाले का भाई था, वो मुसलमान हो गया और उसने कहा कि मुझे तुमने मुसलमानों के हवाले करना है। अब ये कहता है कि मैं बड़ा अंदर से पेचोताप खाता था कि ये लड़की खुद तो मर गई है और जिस दिन मेरे भाई ने कहा मुसलमान हूँ मुझे इस तरह करना, उस दिन मुझे यकीन हो गया कि लड़की की माँ भी मुसलमान ही होके मरी थी और मुझे यकीन था कि ये मुसलमान। अब कहते मुझे अपनी फिक्र लग गई कि कहीं मैं इस्लाम से मुतासर ना हो जाऊँ। लेकिन फिर उसके बाद लंबी कहानी है, अल्लाह ने इस डाकू जो मुशरिक भी था, कितने लोगों का कातिल था, बिल आखिर अल्लाह ने इसको भी इस्लाम दे दिया। और वो जो कुर्बानियाँ और जो मारें खानी और जो तकलीफें सहनी और जो भुगतना भुगताना था, ये सारी मारे मैंने और आपने तो नहीं सही। आज मैं और आप अपने आप से पूछे, हमने इस इस्लाम के लिए आज तक क्या कीमत दी? अगर कोई मुझसे और आपसे पूछे, 2015 के सेंचुरी के मुस्लिम्स, आप लोग आज के दौर में इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? कोई मुझे पूछे, कोई आपसे पूछे, हम खुद से पूछे, एक ही बात है, हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? तो मेरा भी यही जवाब हो सकता है, आपका भी हो। मेरा पहले यही होता, अब तो बिल्कुल ये नहीं होगा कि मैं सुबह उठी, मैंने फजर पढ़ी, मैंने नफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़ी, फिर मैंने दुआएं पढ़ी, फिर मैंने एक रुकू पढ़ा, फिर मैंने जोहर पढ़ी। क्योंकि हमारे कल्चर में है ही ये, इस्लाम के लिए क्या है? नमाज़े, रोज़ा, हज, ज़कात। तो भाई वो तो आप अपने लिए करते हैं, मैं अपने लिए करती हूँ। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, मैं अपना नाम इस्लाम के दफ्तर से कटवा लूंगी। मैंने ज़कात ना दी, वो माल मेरे साथ चिपका दिया जाएगा क़यामत के दिन, वो एक कंस बनकर, एक नाग बनकर मेरा मुंह फाड़ेगा। ये जो नेकियां हम इस्लाम के फ़राइज़ की सूरत में करते हैं, ये तो हम अपने लिए करते हैं। आज के दौर में हम मुसलमानों को खुद से ये पूछना है कि अल्लाह की नज़रें हम पे लगी हुई हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हम मुसलमानों पे लगी हुई हैं। और अगर मुबालगा ना हो तो कह दूं कि आज दुनिया में जो बिगाड़ है और करप्शन है और बेसकूनी है और डिप्रेशन है और लोग गुनाहों की मौत मर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज हम मुसलमानों ने अपने हिस्से का काम छोड़ दिया। कितने लोगों को इतनी सी बात समझ आ गई है? हमारे हिस्से का काम क्या था? दूसरे पारे की बिल्कुल पहली की अगली आयत को साथ जोड़ लीजिए, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने तुम सबको उम्मते वसत बनाया। अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है, ऑनर दे रहा है। और सूरत आले इमरान 104 और 109 आयत खोल लीजिए, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ। ओ मुसलमानों, तुम बेहतरीन गिरोह हो, आसमान से आपके लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला आपको टाइटल्स दे रहे हैं। आज दुनिया में कहीं प्रेसिडेंट अवार्ड होता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर अवार्ड होता है, कहीं ऑस्कर अवार्ड होता है, वो कोई काम करने वालों को मिलता है, चाहे उसमें उनका जाती कोई हुनर हो या ना हो। किसी को मिस ब्यूटी का अवार्ड मिल जाता है, किसी को बिलियनेरियन का मिल जाता है, किसी को लंबी मूछों का मिल जाता है। ये तो दुनिया के छोटे छोटे अवार्ड्स हैं ना। और आज दुनिया एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशों में जो है, उसमें दौड़ धूप क्या लगी हुई है कि किसी तरह हम आगे निकल जाएं। लेकिन हम उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस लिहाज से यूनिक हैं, कल तक जो काम अल्लाह ताला ने नबियों से लिया था, वो काम आज उम्मते मुस्लिमा के आम लोगों से मांगा। हम सब जानते हैं कि नबी सल्लम आखिरी नबी थे, हमारा ईमान है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। अगर हज़रत ईसा भी आएंगे इंशाल्लाह, तो वो एक उम्मती बनकर आएंगे, नए नबी बनकर नहीं आएंगे। जब नबी सल्लम पर नबूवत का सिलसिला रुक गया, आज से तकरीबन 1435 साल पहले की ये बात थी, आज तक तो कयामत नहीं आई और हमें नहीं पता आगे कितनी सदियां भी और रहती हैं। सहाबा ने फौरन ये सवाल पूछा था नबी सल्लम से कि आपके बाद जो लोग पैदा होंगे, फिर उनको तबलीग कौन करेगा? क्योंकि सहाबा को पता था कि एक नबी के बाद दूसरा नबी आता था और उसके बाद दूसरा आता था और इस तरह सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा को जब जमीन पे भेजा, ये वादा करके भेजा था कि आप दुनिया में जाओगे, हिदायत आएगी, नबी आएंगे, किताबें आएंगी, फिर जो उनकी बात मानेगा उसको जन्नत वापस मिल जाएगी। अब आपको हम दोबारा जन्नत में ऐसे नहीं दाखिल कर सकते बगैर किसी क्वेश्चन के। कहा ठीक है। अब अल्लाह के नबी सल्लम तक इंसानियत अपने पूरे मरहले तय कर चुकी। आदम अलैहिस्सलाम तो पहले इंसान थे, नबी भी थे, लेकिन साहिब शरीयत नबियों में सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। नूह से लेकर नबी सल्लम तक अगर 1 लाख भी मान लीजिए नबी आए, कोई एक आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, अगर एक सैक्रामेंटो में था तो एक सैन फ्रांसिस्को में था तो एक लॉस एंजलिस में था। उस वक्त कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि आज आप यहाँ बोले, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे सामने रूम में कई मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं जो इधर उधर से सुन रहे हैं। अब ये इस वक्त के तोहफे हैं ना, क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली, मीडिया का दौर है, आज पूरी दुनिया एक विलेज बन गई, लेकिन उस दौर में नबियों को चल चल के जाना पड़ता था और जाके पैगाम देना पड़ता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया तो अब उसके बाद वही काम उम्मत मुस्लिमा को दे दिया। कितने लोग हैं जो इस ऑनर के ऊपर अल्लाह का लाख दफा शुक्र अदा करते हैं। हर नबी ने ये ख्वाहिश की थी कि ऐ अल्लाह तू हमें नबी ना बनाता, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बना देता। और आज मुझे और आपको ये ऑनर बिन मांगे मिल गई। हमने अपनी माँ चूज नहीं की, हमने अपना बाप चूज नहीं किया, हमने अपने डेट ऑफ बर्थ चूज नहीं की, प्लेस ऑफ बर्थ चूज नहीं की, एरा चूज नहीं किया कि हमें 2000 की सेंचुरी में रखना, 19 में पैदा कर देना, 2000 में हम अपनी जिंदगियां गुजार दें। ये सब अल्लाह का फैसला था। अब अगर इतनी ऑनर मिलने के बाद अगर हम सब अपनी जिंदगी से और अपने इस दुनिया में आने से दुनिया को कोई डिफरेंस ना देकर जाएं तो हमने आने का मकसद हासिल नहीं किया।